नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। गौतम अडानी एक ऐसा नाम है जो पिछले करीब एक महीने से हर अखबार, टीवी चैनल और वेबसाइट की सुर्खियां भरे हुए हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने 24 जनवरी 2023 को अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट हुई और शेयर बाजार में भी लगातार कोहराम मचा हुआ है। इसके बाद से ही गौतम अडानी दुनिया भर के अमीरों के लिस्ट में लगातार नीचे होते जा रहे हैं। अब अडानी इस लिस्ट में लुढ़क कर 29वें नंबर पर हैं। अडानी के अलावा देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी भी इस लिस्ट में नीचे फिसलकर 12वें नंबर पर आ गए हैं। दोनों ही अरबपतियों की नेटवर्थ में गिरावट हुई है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही गौतम अडानी को लगातार नुकसान हो रहा है, उनकी नेटवर्थ कम हुई है, ग्रुप के शेयरों में भी गिरावट हो रही है और निवेशक चिंतित हैं। बता दें कि एक समय उनकी नेटवर्थ 150 अरब डॉलर के करीब थी और वह दुनिया के दूसरे सबसे रईस शख्स बन गए थे। एशिया के वह पहले शख्स थे जिसने ये मुकाम हासिल किया था, पर अब अडानी की दौलत लगातार कम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देश की जो क्षमता है वह सोने की खदान या तेल के कुएं से कम नहीं है। आम बजट 2023-24 में हरित वृद्धि को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं के संबंध में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं सभी पक्षों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। उन्होंने कहा, ये बजट सिर्फ एक अवसर नहीं है बल्कि इसमें हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिहाज से भारत साल 2014 के बाद से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खदान या तेल के कुएं से कम नहीं। मोदी ने बृहस्पतिवार को हरित वृद्धि विषय पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में पूंजीगत व्यय में वृद्धि, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और वित्तीय बाजार को मजबूत बनाने के उपायों की घोषणा से नौकरियां बढ़ाने के साथ आर्थिक वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है। मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक क्षमता में कहा कि चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वे आमतौर पर नरमी का संकेत देते हैं। इसका एक कारण मौद्रिक नीति को कड़ा किया जाना है, जिससे वैश्विक मांग पर प्रतिकूल असर दिखना शुरू हो गया है। इसमें कहा गया कि ये स्थिति साल 2023 में भी जारी रह सकती है, क्योंकि विभिन्न एजेंसियों ने वैश्विक वृद्धि में गिरावट की आशंका जताई है। मौद्रिक नीति कड़ी किए जाने से उत्पन्न प्रभाव के अलावा दुनिया के कुछ देशों में महामारी का असर बने रहने तथा यूरोप में तनाव से वैश्विक वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भारत की अध्यक्षता में G20 की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट एल येलेन से यहां बृहस्पतिवार को मुलाकात की। FMCBG की बैठक 24 और 25 फरवरी को बेंगलुरु में होगी। इस मुलाकात में सीतारमण और येलेन ने 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक की प्राथमिकताओं के बारे में बात की। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट किया, दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, वैश्विक कर्ज संवेदनशीलताओं, क्रिप्टो परिसंपत्तियों और स्वास्थ्य जैसे विषयों के अलावा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में बात की। इसमें कहा गया कि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि कोविड-19 महामारी से जो सबक मिले हैं वे व्यर्थ नहीं जाने चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए अधिक तैयारी करने की जरूरत है। इससे पहले सीतारमण ने इटली के वित्त एवं अर्थव्यवस्था मंत्री एवं जियान कार्लो जियार्गेटी से भी मुलाकात की। श्रम प्रधान परिधान क्षेत्र 2023 तक देश के व्यापारिक निर्यात को 1000 अरब डॉलर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने बृहस्पतिवार को ये कहा। AEPC ने कहा कि बजट में दिए गए प्रोत्साहन के जरिए उद्योग को बाजार और उत्पादन विविधीकरण पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। परिषद के अध्यक्ष नरेश गोयंका ने कहा कि निर्यात सुगमता का माहौल मिलने से क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। गोयंका ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ व्यापार समझौते और कोष में वृद्धि जैसी सरकार की अहम पहलों से हमें बाजार विविधीकरण और उत्पाद में भी विविधता पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का एक बजट पेश करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य के लोगों पर कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। खट्टर के पास राज्य के वित्त मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने आगामी वित्त वर्ष के लिए 183,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो संशोधित अनुमान 164,808 करोड़ रुपए से 11.6% अधिक है। भाजपा और जजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने यहां विधानसभा में कहा कि बजट में नया कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यमंत्री ने बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को मौजूदा 2,500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,750 रुपए प्रति माह करने और हरियाणा गौरक्षा सेवा आयोग के लिए कोष को मौजूदा 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव रखा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।